नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान के तालिबान के अधिग्रहण के बाद से काबुल की पहली आधिकारिक भारतीय यात्रा में विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम ने गुरुवार को तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के प्रभारी संयुक्त सचिव जेपी सिंह ने भारतीय टीम का नेतृत्व किया। इससे पहले वह कतर के दोहा में तालिबान अधिकारियों से मिल चुके हैं। पिछले अगस्त में तालिबान के शहर में प्रवेश करने के तुरंत बाद भारत ने काबुल में अपना मिशन बंद कर दिया। सिंह के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने दिन के दौरान काबुल में एक अस्पताल, एक स्कूल और एक बिजली संयंत्र का दौरा किया। तालिबान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहर बल्खी ने बैठक की एक तस्वीर ट्वीट की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान और भारत के बीच राजनयिक संबंधों, द्विपक्षीय व्यापार और मानवीय सहायता पर चर्चा की गई। बल्खी ने कहा, मुत्ताकी ने विदेश मंत्रालय और भारत सरकार के पहले प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और इसे दोनों देशों के बीच अच्छी शुरुआत कहा। उन्होंने अफगानिस्तान को हाल ही में मानवीय और स्वास्थ्य सहायता के लिए भारत को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बृहस्पतिवार को अपने ऑस्ट्रियाई समकक्ष अलेक्जेंडर शिलनबर्ग से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुद्दों के साथ ही अफगानिस्तान और हिंद प्रशांत की स्थिति पर चर्चा की। जयशंकर स्लोवाकिया और चेक गणराज्य के दो देशों के अपने दौरे के पहले चरण में बृहस्पतिवार को यहां पहुंचे। विदेश मंत्री ने ट्वीट किया, ऑस्ट्रिया के मेरे दोस्त शिलनबर्ग से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मार्च की यात्रा के बाद से दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति पर गौर किया। हमने यूक्रेन रूस के संघर्ष और इसके प्रभावों पर उनके दृष्टिकोण की सराहना की। अफगानिस्तान और हिंद प्रशांत की स्थिति पर भी चर्चा की। जयशंकर की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब यूरोप यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के प्रभावों से जूझ रहा है। 2 से 4 जून तक स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में अपने प्रवास के दौरान जयशंकर प्रधानमंत्री एडुआर्ड हेगर से मुलाकात करेंगे और विदेश मंत्री इवान कोरकोक के साथ द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री ग्लोबसेक 2022 फोरम में भी शामिल होंगे। जयशंकर स्लोवाकिया और चेक गणराज्य में भारतीय छात्रों सहित भारतीय प्रवासियों से भी बातचीत करेंगे। अमेरिकी विदेश विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संसद को सौंपी गई अपनी वार्षिक रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि भारत में 2021 में अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों पर पूरे साल हमले हुए, जिनमें हत्याएं और धमकाने के मामले भी शामिल हैं। विदेश विभाग के फागी बॉटम मुख्यालय में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति और उल्लंघन के लिए अपना दृष्टिकोण देती है और इसमें प्रत्येक देश पर अलग अलग अध्याय हैं। भारत ने पहले अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि उसे किसी विदेशी सरकार द्वारा अपने नागरिकों के संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकारों के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। रिपोर्ट के भारत खंड में कहा गया, धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों पर हमले, मारपीट और डराने धमकाने सहित पूरे साल होते रहे। इनमें गौहत्या या गौमांस के व्यापार के आरोपों के आधार पर गैर हिंदुओं के खिलाफ गौ सतर्कता की घटनाएं शामिल थी। यह आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान का भी उल्लेख करती है कि भारत में हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए एक ही है और उन्हें धर्म के आधार पर अलग नहीं किया जाना चाहिए। चीन नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की मदद के लिए एक बार फिर आगे आया है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने बृहस्पतिवार को कहा कि चीन के बैंकों ने उनके देश को 2.3 अरब डॉलर के पुनः वित्त पोषण पर सहमति जताई है, जिससे पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी। इस्माइल ने ट्वीट कर कहा, चीनी बैंकों द्वारा जमा लगभग 2.3 अरब अमेरिकी डॉलर के पुनः वित्त पोषण के नियम और शर्तों पर सहमति व्यक्त की गई। उन्होंने कहा, दोनों पक्षों की ओर से कुछ नियमित अनुमोदन के बाद जल्द ही वित्त पोषण प्राप्त होने की उम्मीद है, जिससे हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी। पाकिस्तान स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भारी दबाव में है, जो 6 मई को समाप्त सप्ताह के दौरान 19 करोड़ डॉलर घटकर 10.308 अरब डॉलर रह गया। भारतीय सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों की सदियों पुरानी परंपरा के माध्यम से वैश्विक मुद्दों को सुलझाने के उद्देश्य से प्रख्यात भारतीय आध्यात्मिक नेताओं का एक समूह अमेरिका के लॉस एंजलिस में वैश्विक शांति वार्ता के लिए एकत्रित हुआ है। आगामी 4 जून को दक्षिणी कैलिफोर्निया के जैन केंद्र में नई दिल्ली स्थित अहिंसा विश्व भारती फाउंडेशन द्वारा आयोजित की जाने वाली वैश्विक शांति वार्ता में आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर, प्रख्यात जैन नेता आचार्य लोकेश मुनि, बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबेरॉय सहित अन्य लोग शामिल होंगे। अमेरिका में एक भारतीय नागरिक पर आवर्जन दस्तावेजों में धोखाधड़ी करके पहचान छिपाने का आरोप लगा है। एक अमेरिकी वकील ने ये जानकारी दी। अमेरिकी अटर्नी फिलिप सेलिंगर ने बृहस्पतिवार को कहा कि पश्चिम बंगाल के 30 वर्षीय रोहित कुमार पर फर्जी और धोखाधड़ी वाले आवर्जन दस्तावेज जमा करने और पहचान छिपाने के 6-6 आरोप हैं। आवर्जन दस्तावेज धोखाधड़ी के प्रत्येक जुर्म के लिए 10 साल तक की जेल की सजा और अधिकतम 2,50,000 अमेरिकी डॉलर के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं पहचान छिपाने के प्रत्येक मामले में 2 साल जेल की सजा दी जाती है। साथ ही अधिकतम 2,50,000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस मामले में दायर दस्तावेजों और अदालत में दिए गए बयानों के अनुसार कुमार ने दुनिया की सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक के लिए भारत में कई वर्षों तक काम किया। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।